समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। तो इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज सवेरे में एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर है, लेकर देश और दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और तन्वी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड टिल 8 o'clock वी आर गोइंग टू बी हियर विद यू, एंड वील बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, सम मेट्रो सिटी अपडेट्स, सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डे एंड अ लॉट मोर। टूडे इज 21st of November 2025 and also Friday, so just want to wish you all a very happy Friday, and weekend is just tomorrow, so all the very best, enjoy and smile more. Let's begin our program with the news headlines, shall we?
बिल्कुल तन्वी, सबसे पहले शुरुआत करते अब तक की सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। दक्षिण अफ्रीका की उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी, और उसके बाद वर्ष 2018 और 2023 में वहां दो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जोहान्सबर्ग में हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला यह लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा।
India has warned against unilateral trade restrictive climate measures, stressing that they undermine equity and justice. Speaking at the third annual high-level ministerial roundtable on just transition during COP30 in Belém, Brazil, Union Minister for Environment Bhupendra Yadav called for stronger international cooperation and multilateralism. He emphasized that developing countries need sufficient policy space to address developmental gaps and vulnerabilities. Abilities, ensuring the well-being of their people in line with their national circumstances. The minister emphasized that India looks forward to an ambitious outcome at Belém with the establishment of this mechanism to address a critical gap in delivering the convention and Paris Agreement.
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। श्री चौहान ने कल नई दिल्ली में 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी करने के बाद यह बात कही। श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 106 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने प्रयास जारी रखेगी।
India and Israel have signed the terms of reference to initiate negotiations for a free trade agreement, that is FTA, in Tel Aviv, marking a major step towards deepening bilateral economic cooperation. The terms of reference was signed by Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Israel's Economy and Industry Minister Nir Barkat. Speaking on the occasion, Piyush Goyal said that both the countries had agreed to begin work on a comprehensive FTA, a move aimed at reshaping bilateral trade and also investment. He said that this is the first crucial step towards facilitating talks to conclude a balanced, comprehensive and mutually beneficial FTA to strengthen and enhance trade, economic and strategic partnership.
अमेरिका ने आतंक से जुड़े नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ जारी साझेदारी की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह बयान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की घोषणा के बाद आया, जिसे बुधवार को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया.
India concluded their debut campaign at the World Boxing Cup Finals 2025 with a stunning haul of 9 gold medals on the final day in Greater Noida, Uttar Pradesh. Indian women boxers Jasmine Lamboria, Nikhat Zareen, Parveen Hooda, Arundhati Chaudhary, Preeti Pawar, Meenakshi Hooda and Nupur Shiorin delivered a golden sweep with 7 gold medals in the tournament yesterday, marking a historic achievement for the country. And in men's section, Sachin Sivach and Hitesh Gulia have clinched gold medals in their categories.
और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से.
A group of women auto drivers in Chennai has launched an association called the Association for the Welfare of Brave Women. It now has 400 members who are working towards they are demanding safer working conditions, better access to toilets, protection from harassment by male drivers, and also more respect on the roads. This association plans to expand its work to Coimbatore soon. According to Mohan Sundari, the president of the group said, the members can receive several benefits. These include legal help, support from the RTO, help in getting government-issued pink autos for women drivers, accident compensation of up to 10 lakh rupees, low interest loans up to 50,000 rupees and medical insurance of rupees 6 lakh. Members can also get up to 5,000 rupees as household allowance. The monthly membership fee for the association is 222 rupees.
अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कल दिल्ली के लाल किले की आतंकी घटना में संलिप्त 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर चारों आरोपियों को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया है. अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी मुकेश की रिपोर्ट.
गिरफ्तार आरोपियों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और मुफ्ती इरफान अहमद वागे तथा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं. एजेंसी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के प्रयासों के अंतर्गत पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पूछताछ जारी है. अभिकरण को हमले के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने जाँच की जिम्मेदारी सौंपी थी. एजेंसी नरसंहार में शामिल आतंकी मॉड्यूल के प्रत्येक सदस्य का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम कर रही है.
And moving towards Bangalore, Greater Bangalore Authority Chief Commissioner Maheshwar Rao addressed engineers and contractors from the city's municipal corporations during a 2-day capacity building program at the Administrative Research Institute. He highlighted that the Tender Shore project, which focuses on improving city infrastructure, has earned national recognition. Mr. Rao urged engineers to work with commitment, pay attention to details and follow efficient, structured methods. During the event, a demonstration of the Nama Raste Kaipidi was presented and the booklet guides officials on preparing proposals and tenders, building footpaths, managing utilities, ensuring road safety, designing ward roads and preventing floods.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर. युवाओं को रोजगार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की उपस्थिति में मुंबई में इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी 45 ITI में हल्के मोटर वाहनों से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी, जिससे लगभग 8,000 छात्र लाभान्वित होंगे. पहले चरण में मार्च 2026 तक ऐसी 13 प्रयोगशालाएं आयोजित करने की उम्मीद है. मुंबई से एक और खबर है हमारे पास, जहां 8वीं पश्चिमी नौसेना कमान नौसेना हाफ मैराथन इस रविवार मुंबई में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 20,000 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है. नौसेना दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य नौसेना कर्मियों और नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है.
And we have some news from Hyderabad, Minister for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Jayant Chaudhary, has inaugurated the Centre of Logistics Training for Excellence at the National Skill Training Institute, Hyderabad, last evening. Addressing the gathering, Jayant Chaudhary said, this initiative marked a significant leap towards technology-driven skilling in India's logistics sector. He said, the country's logistics sector is entering a high-growth decade powered by the National Logistics Policy, PM Gati Shakti, and unprecedented investments in multimodal infrastructure. The centre has been established by the Logistics Sector Skill Council in partnership with Reddington Foundation. The centre builds on the successful model of the Chennai Centre of Logistics Training for Excellence that was set up last year. The Chennai Centre achieved high impact outcomes through learning modules, industry-grade simulators, and strong academic industry partnerships.
अब सुनते हैं कोलकाता समाचार. आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच FLC आज कोलकाता के न्यू टाउन में होगी. इस प्रक्रिया में निगरानी भारत निर्वाचन आयोग की टीम करेगी, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती करेंगे, जो वर्तमान में राज्य की सिस्टम इंटीग्रेशन रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं. आयोग के सचिव मधुसूदन गुप्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक PC मंडल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
And now we have a special report on the ongoing IFFI 2025. The 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, dawned on Goa with unparalleled grandeur as the opening parade transformed the city's streets into a riot of colours and lights. The day two today and the most sought-after Indian panorama section will be inaugurated, which brings the story of India's rich cultural diversity through films. We have a report.
For the first time in IFFI's history, the festival rolled out the red carpet with a grand opening parade last evening, replacing the traditional indoor opening ceremony. Chief Minister Pramod Sawant, along with Governor Ashok Gajpati Raju, Secretary Ministry of I&B Sanjay Jaju, Minister of State I&B Dr. L. Murugan, and Festival Director Shekhar Kapoor flagged off the majestic spectacle amidst an exhilarating atmosphere.
I welcome everyone to the Goa's 56th International Film Festival of India. Once again, welcome one and all.
They were joined by other prominent film personalities like Muzaffar Ali, actor Anupam Kher, N. Balakrishna, and filmmaker Om Prakash Mehra, among others. Renowned actors, filmmakers, and industry professionals who attended the opening of the Grand Parade added glitz to the already dazzling atmosphere. Ms. Jae Won Kim, member of National Assembly, Republic of Korea, sang Vande Mataram, celebrating 150 years of the national song, and the audience stood up in veneration.
Vande
N. Balakrishna was felicitated for his contribution to Indian cinema through 50 glorious years. Actor Anupam Kher regaled everyone by his sense of humor, while filmmaker and festival director Shekhar Kapoor shook a leg on the stage, adding to the electrifying atmosphere. The parade concluded with a grand finale at the Kala Academy, leaving the audience spellbound. Later, the opening film, The Blue Trail, was screened at various screening venues. Today, on day two, the most sought-after Indian panorama section will be inaugurated. The Indian panorama at the IFFI is a showcase of the best of Indian films, highlighting the country's rich cinematic diversity and talent through films weaving a cinematic tapestry, one frame at a time. Indian panorama encourages emerging filmmakers, writers and actors and provides them opportunities to gain exposure. Indian panorama showcases the diverse cultural, social and regional themes and stories that reflect India's pluralistic society. The section recognizes and celebrates outstanding Indian films, direction, acting and other technical categories. This year, Kakori, directed by Kamlesh Mishra, is the opening non-feature film, while Tamil film Amaran by Rajkumar Periyasamy is the opening feature film. Other films in the Indian Panorama section include A Short Trip, In Search of the Sky, Gondhal, Sikar, Rubaru, Shangri-La, Dadhom, That's a Wrap, among others. While the festival continues to bring together remarkable world cinema at one place, many interesting sessions are lined up today. This is Saira Mujtaba, Akashvani News, Goa.
श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और तन्वी के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज मध्यम कोहरे का अनुमान है। शहर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। अब बात मुंबई की करें तो आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आज आसमान साफ रहेगा, आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
Absolutely. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 24 degrees and maximum will be around 30 degrees. Bangalore is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 19 degrees and maximum will be around 29 degrees. And if we talk about Hyderabad, Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with haze. The temperature will somewhere hover between a minimum of 14 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. And today, 21st of November, we mark World Television Day, a day designated by the United Nations to acknowledge the power of the small screen in shaping our world. The United Nations proclaimed World Television Day in 1996, commemorating the first World Television Forum. While the world celebrates television's role in global communication, education and peace, join us for a moment to reflect on its truly monumental journey here on Indian grounds, a journey that is for many synonymous with a single iconic name, Doordarshan. India, the story began much earlier in 1959 with an experimental transmission in Delhi. Its primary goal was not entertainment, but education and development. In 1975, two major milestones cemented its unparalleled reach and significance. First, the Satellite Instructional Television Experiment, that is SITE, and second, the introduction of color broadcasting with the 1982 Asian Games in Delhi, which instantly transformed the medium from a black and white utility into a vibrant, modern spectacle, capturing the national imagination.
बिल्कुल तन्वी, दूरदर्शन का इतिहास काफी रोचक रहा है। याद है भारत का पहला सोप ओपेरा हम लोग? इस शो की खासियत यह थी कि यह एक आम मिडिल क्लास परिवार की कहानी के बहाने से परिवार नियोजन और महिलाओं की शिक्षा जैसे जरूरी सामाजिक संदेश बहुत ही अच्छे से दिखाता था। वहीं किसानों को सिखाने वाला शो कृषि दर्शन तो आज तक चल रहा है। यह भारतीय टेलीविजन का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने लाखों किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया। लेकिन सच कहूं तो जो कुछ शो ऐसे भी थे जो पूरे देश को एक साथ ले आए, वे थे जब रामानंद सागर की रामायण और बीआर चोपड़ा की महाभारत आई थी।
अथ श्री महाभारत कथा,
अथ श्री महाभारत कथा,
महाभारत कथा।
जब ये कार्यक्रम टीवी पर आते थे तो सड़कें एकदम खाली हो जाती थी। हर कोई हर काम छोड़कर बस टीवी के सामने बैठा होता था। तो श्रोताओं, आपसे यही आग्रह है कि टेलीविजन को एक बार फिर उसी तरह से अपनाएं जैसे पुराने जमाने में होता था।
बिल्कुल। लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर डे एंड व्हाट ऑल हैपेंड ऑन दिस डे। In 1877, American inventor and businessman Thomas Alva Edison announced his invention of the phonograph on this particular day.
और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने कीमत का प्रथम भारतीय डाक टिकट जय हिंद जारी किया था आज ही के दिन।
In the year 1908, revolutionary Satyendra Bose was hanged in Alipur jail for the murder of the jail informant, becoming a martyr for the independence movement.
और आज ही के दिन 1962 में भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। और जब चीन की बात कर ही रहे तो भारत के साथ इसके कुछ और इतिहास जुड़े हैं। भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला आज ही के दिन किया था।
एंड इफ वी टॉक अबाउट 1969, द फर्स्ट परमानेंट ARPANET link, a precursor to the internet, was established between the University of California, Los Angeles and the Stanford Research Institute.
और 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से पहला रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ और भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। और श्रोताओं, अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी कहे जाते थे। एक मुखबिर को उन्हें जेल के अंदर खत्म कर देने के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें आदर के साथ लोग सत्येन बोस के नाम से भी पुकारते थे। आज जयंती है प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की। उन्होंने बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साथ इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष आदि का अध्ययन कर प्रमाणिक विद्वता प्राप्त कर ली थी। केसरी सिंह बारहट का नाम कितना प्रसिद्ध था उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय श्रेष्ठ नेता लोकमान्य तिलक ने अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें जेल से छुड़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। 1921 में वर्धा में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया।
And today is the birth anniversary of K.S. Chandrasekharan, a professor at ETH Zurich and a founding faculty member of the School of Mathematics, Tata Institute of Fundamental Research, that is TIFR. He is known for his work in number theory and summability. He received the Padma Shri, the Shanti Swarup Bhatnagar Award and the Ramanujan Medal, and he was an honorary fellow of TIFR. He was the president of the International Mathematical Union IMU from 1971 to 1974. And today we are also remembering Ruma Guha Thakurta, an Indian actress and singer. Today is her birth anniversary. She's primarily associated with Bengali language films and she founded the Calcutta Youth Choir in 1958. She was a trained vocalist and a dancer. She started training in music at the very early age, and in later years she studied under Abdul Rahman Khan of Patiala Gharana, the Ustad of Nirmala Devi and Lakshmi Shankar in Bombay. She made her acting debut in Jwar Bhata at the age of just 10, and this was the debut movie of the star Dilip Kumar. And she has been a part of multiple successful movies, be it Balika Vadhu, Ganga, Arogya Niketan, Mashal, Banarasi and many more. She has also sung a lot of songs, be it Hindi or Bengali. So let's enjoy a track sung by her in Bengali.
Inite parini budhu tumari e angina tai deri holo je deri holo je tumar kache ashite shokha tumar kache ashite bolite janina budhu ki je mor jato na kichu mana chilo na mana chilo na tumar kache bolite shokha tumar kache bolite।
हम याद कर रहे हैं मातृभूमि के वीर सपूत नायक यदुनाथ सिंह को, जिनकी आज जयंती है। 1916 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के गांव खजूरी में किसान परिवार में जन्मे यदुनाथ में देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी। 21 नवंबर 1941 को यदुनाथ को मनचाहा काम मिल गया। उस समय वह मात्र 26 वर्ष के थे। उन्होंने फौज में प्रवेश किया, उन्हें राजपूत रेजिमेंट में लिया गया। इन्हें मरणोपरांत 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका सेवा काल 1941 से 1948 तक रहा। कहते हैं उस समय भारत पाक भारत की लड़ाई का गजब वह दौर था, हर तरफ बारूद, बम और गोलियों का शोर था।
And today we are also remembering Sir C.V. Raman. Today is his death anniversary, an Indian physicist known for his work in the field of light scattering. And yes, he was the first Asian and non-white person to receive a Nobel Prize in physics. And in 1930, C.V. Raman received this prize for his discovery. And childhood, he was a precocious child, completing his secondary and higher secondary, that is 10th and 12th, at the age of 11 and 13. He topped the bachelor's degree examination from the University of Madras with honours in physics from Presidency College at the age of just 16. The Raman effect was discovered on 28th of February 1928, and this day is particularly celebrated annually by the Government of India as the National Science Day.
आज सुप्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरमीत वावा की पुण्यतिथि है। गुरमीत के नाम से पंजाबी लोक गायन में 45 सेकंड की हेक का रिकॉर्ड था, यानी उन्होंने एक ही सांस में 45 सेकंड का गायन कर यह रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए उन्हें लंबी हेक दी मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। गुरमीत वावा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अपने करियर में प्राप्त किए और वह जुगनी गाने वाले सिंगर्स में से एक थी। गुरमीत पहली पंजाबी महिला गायिका थी जिन्होंने दूरदर्शन पर गाने गाए थे।
And today is the birthday of Guneet Monga, an Indian film producer. She has produced many films, be it Gangs of Wasseypur Part 1, Part 2, The Lunchbox, Masaan, Kathal, Paglet and many more. She has got the Academy Award for her documentary short film, The Elephant Whisperers, in 2023. And we have a part of her Oscar speech, so let's hear that.
I stand here today to speak for the sacred bond between us and our natural world, for the respect of indigenous communities, and empathy towards other living beings we share our space with, and finally, for coexistence. Thank you to the Academy for recognizing our film, highlighting indigenous people and animals.
अब हम बात कर रहे हैं अपनी तरह के अनोखे और अद्भुत कलाकार प्रेमनाथ मल्होत्रा की, जिन्हें हम प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। आज उनकी जयंती है। 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दिलों का दिल जीतने वाले मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ मल्होत्रा ने अपनी एक्टिंग इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। बतौर हीरो ही तो उन्होंने अपनी कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन पहचान खलनायक बनने के बाद मिली।
जीएनके की एक उंगली का इशारा किसी घमंडी का कितना सत्यानाश कर सकती है वो तुम अच्छी तरह जानते हो, और बाकी रहे तुम्हारे अरमान।
सुनते हैं 1955 में फिल्म अबे हयात में उन पर फिल्माया गया यह गीत।
मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, बेकसों के लिए प्यार गाया।
Today is the birthday of Nikhil D'Souza, singer, songwriter and guitarist. His genre and musical style can be loosely defined as the eclectic acoustic guitar-based pop. Let's enjoy one of his tracks from the film Aisha.
आज हेलन का जन्मदिन है। एक ऐसी अभिनेत्री 70 और 80 के दशक के जिन्होंने अपने डायलॉग से नहीं बल्कि अपने डांस से एक पहचान बनाई। सुनते हैं ये गीत।
मेरा नाम किंचिंचू, किंचिंचू बाबा किंचिंचू, रात चांदनी में और तू
She has appeared in over 500 films, making her a prolific performer in Hindi cinema. And she has got the Padma Shri by the Government of India in 2009. Let's hear a track by her.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और तन्वी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
नमस्कार, नमस्कार।